તારીખ 3/5/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 24.
પ્રત્યેક ગુણ મે પરિણમન કે યથાર્થતા આતી હૈ પ્રત્યેક ગુણ કા પરિણમન ભી વર્ધમાન હોતા હૈ ઓર સમીકાર સે परिणाम जो है वो गिरते नहीं, तो सम्यक्त्व को कैसे समझे, यानी प्रत्येक गुण की यथार्थता को, सम्यक्ता को, समीचीनता को कैसे समझे, ये प्रश्न चल रहा था। उस पर से हमें पहले श्रद्धा गुण के विषय में इसका स्पष्टीकरण देना है कि श्रद्धा में, श्रद्धा का कार्य जो है, श्रद्धा का, श्रद्धा के रूप में जो कार्य है, श्रद्धने के रूप में जो कार्य है, वो कार्य में श्रद्धा अपने निज सिद्ध पर को निर्विकल्प प्रतीति के रूप में सद्धती है। श्रद्धा का श्रद्धा गुण रूप परिणमन क्या होता है, फिर से कि अपने सिद्ध स्वरूप को निर्विकल्प प्रतीति रूप में रखना, यही श्रद्धा का श्रद्धा प्रधान कार्य है। आप कहेंगे को निर्विकल प्रतीति रूप कैसे परिणमन होता है श्रद्धा का, तो उल्टा परिणमन के दृष्टांत से सुल्टा परिणमन समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। कि जैसे हम अभी कर्मजनित पर्याय से मनुष्य पर्याय में है, पर मनुष्य में भी पुरुष पर्याय में है या स्त्री पर्याय में है, जो भी है, जिसको जो पर्याय है, उनकी निर्विकल्प प्रतीति चल रही है कि नहीं चल रही है, कि चल रही है। हम फलाने पुरुष है, फलाने मनुष्य है, उसके विषय में निर्विकल्प प्रतीति चल ही रही है। उल्टी श्रद्धा में, श्रद्धा जब अपने सिद्ध पद का के काल में होता है, तब मैं ऐसा ही हूं, एक निर्विकल्प प्रतीति जम जाती है, वो श्रद्धा का श्रद्धा के रूप में कार्य है। और वही श्रद्धा को ज्ञान प्रधानता से देखे तो आश्रित नव तत्वों की श्रद्धा है, वो तो निश्चय सम्यक दर्शन है। समय सार की 13वीं गाथा ले लेना, समय सार की 13वीं गाथा। ऐसे तो श्रद्धा का विषय श्रद्धा से देखो तो अपना स्वरूप ही है। श्रद्धा का विषय नव तत्व नहीं है, फिर भी जिनागम में नव तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोला है। तो कब, किस अपेक्षा से है ये बात, कि भूतार्थ आश्रित वो श्रद्धा होवे, तो भूतार्थ आश्रित माने क्या, कि अपना जो मूल ध्रुव सिद्ध पद है वो भूतार्थ पद है, भूत मैना होना, त्रिकाल होते रहना, त्रिकाल बने रहना, वैसा का वैसा, ऐसा जो अपना सिद्ध स्वरूप है उसके आश्रित श्रद्धा है, तो नवों के रूप में जो विश्वास आता है कि पुण्य ऐसा ही होता है, संवर ऐसा ही होता है, जीव ऐसा ही होता है, अजीव ऐसा ही होता है, मोक्ष ऐसा ही होता है, निर्जरा ऐसी होती है। ऐसी प्रतीति स्वरूप के श्रद्धान पूर्वक नवों की यथार्थ होती है, तब उसको सम्यक दर्शन बोलने में आया है। तो ये श्रद्धा का ज्ञान प्रधान पहलू है। क्या है श्रद्धा का? ये ज्ञान प्रधान पहलू है, क्योंकि ज्ञान का विषय नव होता है, श्रद्धान का विषय तो भूतार्थ तत्व एक ही है। फिर भी नव का श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों बोला? ये ज्ञान प्रधान कथन है, क्योंकि ज्ञान में भी विश्वास आता है कि ऐसा ही स्वरूप है, नवों का स्वरूप ऐसा ही है। ऐसे श्रद्धा का एक चारित्र प्रधान पहलू होता है कि निज स्वरूप में आचरण करने से मुक्त दशा की प्राप्ति होगी। ऐसी जो श्रद्धा है मार्ग और मार्ग के फल की, मार्ग है वो आचरण स्वरूप है, मोक्ष मार्ग है वो साक्षात आचरण स्वरूप है, परिणमन स्वरूप है। तो ऐसा आचरण करने से ही मेरी मुक्त दशा होगी। ऐसे स्वरूप की उपादेयता रूप जो आचरण है, अपने स्वरूप को सर्वस्व के रूप में, कैसे सर्वस्व के रूप में, मुझे सर्वस्व के रूप में मेरा स्वरूप ही उपादेय है और कुछ मुझे उपादेय नहीं है। ऐसी उपादेयता की जो श्रद्धा है, स्वरूप उपादेयता की श्रद्धा, उसको श्रद्धा का यथार्थ आचरण रूप सम्यक दर्शन बोलने में आता है। पुण्य से सम्यक दर्शन है, इसलिए कोई श्रद्धा को श्रद्धा के आचरण के पहलू से भी समझ लेता है, ये इसका सम्यक प्रकार है। ज्ञान की प्रधानता से श्रद्धा का ऐसा सम्यक प्रकार है और आचरण की प्रधानता से श्रद्धा का ऐसा सम्यक प्रकार है। ऐसे पुरुषार्थ प्रधान श्रद्धा का पहलू जो है वो ऐसा है कि मुझे सर्व उद्यम से, माने पूरी ताकत से मेरे स्वरूप की उपासना करनी है। इस प्रकार का जो पुरुषार्थ का पहलू है ये श्रद्धा के साथ होता है, उसको श्रद्धा बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रद्धान का बल कहते हैं, श्रद्धा बल उसको कहते हैं। और सुख और आनंद की प्रधानता ऐसे होती है कि स्वरूप के अनंत सुख की प्रतीति, वही निश्चय सम्यक दर्शन है। स्वरूप की प्रतीति में मेरा अनंत सुख मेरे में है, मैं अनंत सुख धाम हूँ, सर्वोत्कृष्ट सुख, अचिंत्य सुख। कैसा? चिंतवन के पार जाना पड़ेगा, चिंतवन में वो समाविष्ट नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट, अचिंत्य और अव्याबाद, मेरे स्वरूप को कोई बाधा, मेरे सुख को कोई बाधा नहीं कर सकता। ऐसा अनंत सुख की प्रतीति वो रूप जो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, वो सुख के, वो श्रद्धा का जो सुख का पहलू है उनको प्रदर्शित करता है। उस तरह से पांचों गुण का प्रकार श्रद्धान में दिखता है तो श्रद्धान सम्यक है। तो जिसको सम्यक्त्व से ज्ञानी की पहचान आती है उनको ज्ञानी के श्रद्धान में इस प्रकार के पहलू देखने में आते हैं। जैसे कृपालु देव ने पत्रांक 679 में ऐसा लिया कि ज्ञानी की वाणी में जो आशय होता है ऐसा आशय अज्ञानी की वाणी में नहीं होता। इसका क्या कारण है? कि ज्ञानी का श्रद्धान, ज्ञानी का ज्ञान, ज्ञानी का आचरण, ज्ञानी का पुरुषार्थ और ज्ञानी की आत्मा की सुख शांति, वो ऐसी सभी सब उतनी सम्यक होती है कि ऐसे यथार्थ सम्यक आशय को लेकर के वो वाणी बाहर आती है। इसलिए वाणी में भी इतनी वैसी वैसी प्रकार की यथार्थता का भाव, वाणी के पीछे जो भाव है, जिस भाव के बैकग्राउंड से जो वाणी उत्पन्न हुई, वो वाणी के माध्यम से वो भाव बिखने में आता है। तो मुमुक्षु जीव है, योग्यतावान मुमुक्षु जीव है, उत्कृष्ट मुमुक्षु है, उनको पता चलता है कि ज्ञानी की वाणी है। उसमें वो ऑरेटरी नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो बाह्य वृत्ति का विषय, अंतर्वृत्ति का विषय नहीं है। ऑरेटरी मैंने वक्तृत्व कला, वो वक्तृत्व कला को नहीं देखेगा, क्योंकि वो बाह्य ज्ञान का विषय है। उसमें वो बोलने वाले की कवि चातुरी को नहीं देखेगा। कभी कभी तो कोई ऐसे होते कि पद बना लेते हैं और ललकारते हैं, तो ऐसे ललकार को वो नहीं देखेगा। न वक्तृत्व कला को देखना है, न पद के ललकार को देखना है, और न शब्द भंडोल को देखना है। कि अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे साहित्य के शब्द, मामूली नहीं बात है, बहुत ऊंचे साहित्य के शब्द प्रयोग कर सकते।
गुण की बात ले ले अपन, उससे उसकी सम्यकता क्या है वो समझ में आएगा, वो ज्ञान की सम्यकता को समझे। कि स्वगुणे अपने रूप से वेदन मार वेदन में आने वाला ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ज्ञान कब सम्यक है? कि ज्ञान स्वसंवेदन रूप परिणमन करता है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिस ज्ञान में अपना स्वसंवेदन नहीं हो, उसमें ज्ञान की सम्यकता नहीं है। चाहे अंग पूर्व की धारणा हो सकती है, लेकिन वो बाह्य उघाड़ है। क्या है
बाह्य उघाड़?
वो तो बाह्य उघाड़ है। ज्ञान से ज्ञान की सम्यकता देखें। सम्यक श्रद्धा पूर्वक उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, जिस श्रद्धा में अपने निज सिद्ध पद का निर्विकल प्रतीति हो, उसे ऐसे श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान खुल जाता है, वो ज्ञान चाहे स्वरूप में प्रवृत्ति करता हो या स्वयं को प्रकाशन करता हो या परद्रव्य को प्रकाशन करता हो, स्वयं के प्रकाशन के काल में भी वो सम्यक है और पर पदार्थ के प्रकाशन के काल में भी वो
सम्यक है।
क्यों? कि सम्यक श्रद्धान के साथ है। इसलिए तो ये श्रद्धान ज्ञान में श्रद्धान का पहलू है। श्रद्धा में भी ज्ञान का पहलू देखा हमने, तो लोग तत्व की श्रद्धा वाला है। अब ज्ञान में श्रद्धा का पहलू क्या है? तो ज्ञान में उसमें स्वरूप की प्रतीति पूर्वक जो ज्ञान खुलता है वो स्वरूप को भी प्रकाशन करता है अपर प्रकाशक होने में, और पर पदार्थ को भी प्रकाशन करता है वो ज्ञान सुनने में। ऐसे ज्ञान में आचरण का पहलू कौन सा है जिससे ज्ञान की सम्यक्ता और समझ में आए, कि स्वरूप में ज्ञान की स्थिरता क्या उपयोग की स्वरूप में स्थिरता वही ज्ञान के आचरण का पहलू सम्यक है, सम्यक आचरण का आचरण प्रधान पहलू है। वो अस्थिर होके उपयोग पर में जाना वो पहलू मान ही लिया है, या तो ये पहलू के स्वरूप में स्थिरता होती है कि नहीं होती है। तो मोक्ष मार्गी जीव को स्वरूप आचरण रूप आचरण होता ही है, और जितना उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है उतनी स्थिरता मानी जाती है। तो ज्ञान की परिणति जितने जिसमें स्थिर हुई, उपयोग जिसमें स्थिर हुआ, ऐसा जो ज्ञान का प्रकार है वो सम्यकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे ज्ञान के बल को ज्ञान बल से, ज्ञान में जो ज्ञान बल होता है वो तो ज्ञान में पुरुषार्थ का रूप है, ऐसा संकेतित सम्यक वाले को ज्ञान का ज्ञान बल होता ही है। जो संकेति होता है और उसको ज्ञान का बल नहीं हो ऐसा बन सकता
नहीं।
ये पुरुषार्थ प्रधान ज्ञान का पहलू है, और आनंद मुद्रित ज्ञान वही सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। क्या कहता होता है सम्यक ज्ञान आनंद जिसकी मुद्रा होती है, जैसे मनुष्य का रूप मनुष्य की मुद्रा से दिखने में आता है, अगर इसकी मुद्रा ठीक है सही है, अपने गुजराती में नमना कहिए इसे, अंग्रेजी में उसमें कहते हैं सिमेट्रिक, ऐसा जिसका सिमेट्रिक फेस है वैसे ज्ञान का फेस क्या है, आनंद जिसकी मुद्रा हो। इसलिए ज्ञानी हमेशा प्रसन्न चित्त होते हैं, कैसे होते हैं प्रसन्न चित्त होते हैं, वैराग्य होते हुए भी प्रसन्न चित्त होते हैं। ऐसा जो ज्ञान का परिणाम है आनंद मुद्रित, वो ज्ञान का परिणाम वो ज्ञान की सम्यक्ता को प्रदर्शित करता है। ऐसे हर गुण में वो पांचों का रूप है वो सम्यक प्रकार से दिखाई देता है, यहाँ से सम्यक्त्व का परिचय होता है और सभी में सम्यक्त्व देखा जाता है, और यही सम्यक्त्व से ज्ञान की पहचान होती है। आनंद मुद्रित होता है मतलब जीव को सम्यक ज्ञान होवे और आनंद नहीं होवे ऐसा नहीं बनता, आनंद से अभेद होते हैं, ज्ञान का परिणमन आनंद से अभेद होता है। जैसे मनुष्य तो मनुष्य है लेकिन इसका कोई ना कोई रूप होता है और इसी रूप से वो मनुष्य पहचाना जाता है, ऐसे ज्ञान का रूप क्या है आनंद रूप ज्ञान है। ज्ञान का रूप क्या आनंद रूप ज्ञान होता है, और कषाय स्वरूप है ना उसमें आनंद होता ही है। उस प्रकार से सम्यक्त्व का जो पहलू है वो हर गुण के दूसरे गुण रूप परिणाम में को पहलू नजर आता है।
आनंद बुद्ध पहलू तो ये तो ज्ञानी के ज्ञान का विषय हो गया, उनके परिणाम का विषय हो गया, ये मुमुक्षु कैसे पकड़े?
मुमुक्षु को भी पकड़ में आएगा।
कैसे पकड़े?
मुमुक्षु के उत्कृष्ट मुमुक्षु की नजर अपनी पैनी होती है तो देख लेता है ज्ञानी आनंद में कैसे रहते हैं। ज्ञानी आनंद में रहते हैं, निजानंद में रहते हैं, तो ज्ञान का रूप भी आनंद है और आनंद में आनंद तो है ही। तो दो ज्ञानानंद और आनंद का आनंद अभेद हो जाता है, वो तो झलकता है, वो तो उनके परिणमन में
झलकता है,
झलकता है। तो आनंद का कोई विधि क्रमात पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट नहीं किया जाता सिवाय आनंद शब्द से, क्योंकि एक वेदन का विषय है। तो वेदन का विषय है वो वेदन से समझा जाता है। जिस आनंद की खोज मुमुक्षु को होती है ऐसा आनंद वो ज्ञानी को ज्ञानी में देखता है। ज्ञान का सम्यक रूप है वो, ज्ञान का क्या सम्यक रूप है, तो सम्यक की प्रधानता से आनंद भी देखने में आ
सकता
है। वो तो है ही, पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्र आत्मिक बिना पात्र ज्ञान
नहीं। इवन टू रिकॉग्नाइज ए ज्ञानी,
वो तो ऐसा है कि सिंह का दूध है वो सोने के पात्र में रहता है, मिट्टी के पात्र में सिंह के दूध को रखो रखो वो पात्र फट जाएगा, टूट जाएगा। सिंहन के दूध को रखने के लिए पात्र भी सोने का चाहिए। ऐसे सम्यक को पाने के लिए पात्रता भी उत्कृष्ट चाहिए। जैसे हीरा खरीदने के लिए पैसा 1000 रुपया चाहिए, वो 5-25 रुपये में हीरा का खरीद, हीरा का तो नहीं, हीरा के रज का भी खरीद नहीं होगा क्या? जो हीरा घिसते घिसते रज खटती है ना, उसकी खरीदी भी कैरेट में होती है, तो वो भी नहीं मिलेगी 5-25 रुपये में। 5-25 रुपये में सब्जी तरकारी मिल सकती है लेकिन हीरे की खरीदी नहीं हो सकती है। तो सम्यक तो रत्न है क्या?
रत्न
विश्व का सर्वोत्कृष्ट रत्न है, उनको पाने के लिए पात्रता तो चाहिए ना। प्रमाणिकता से माल लेना है या अप्रमाणिकता से माल लेना है, ये तो बात ऐसी होगी कि क्या करें, हमारे में पात्रता नहीं है लेकिन हमको सम्यक दर्शन चाहिए। तो हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारे चाहिए हीरा के आभूषण, हीरे के आभूषण हमें चाहिए, पैसा भले हमारे पास नहीं है तो ऐसे तो कोई बात मिलती
नहीं
है। जगत में भी ऐसे वस्तु नहीं है।
माता जी, माता जी, आपने सबके संगीत पुकारिए,
जी बहनश्री ने अपनी मुमुक्षु की भूमिका में एक बात लिखी थी, पत्र जो पत्र छपे हैं इसमें, कि हम लोग कहते हैं कि हमें सम्यक चाहिए, संकित चाहिए, संकित चाहिए, लेकिन संकित आएगा तो रखेंगे कहाँ? हमको चाहिए कोहिनूर हीरा, लेकिन हमारी झोपड़ी में हीरा की सुरक्षा हो सकती है क्या? इसके लिए तो मजबूत तिजोरी चाहिए। तो हमारे पास तो रखने की तो जगह है नहीं, व्यवस्था है नहीं, और हमको चाहिए, वो बात तो प्रमाणिक आदमी के लिए शोभास्पद भी नहीं है। कोई प्रमाणिक आदमी बिना पूरा पैसे खर्च किए बिना माल चाहेगा नहीं। लौकिक में भी प्रमाणिक आदमी होता है वो ऐसा कहेगा, अपना कोई समझी के दुकान पर जाएगा तो देखिए आपके पास हमको ये माल लेना है लेकिन आपको पूरा पैसा लेना है, हम आपके सगे हैं समझी है इसलिए आप हमारे पैसे कम लेना, ऐसी एक मान्यता हमारे नहीं है। हम आपको कहेंगे कि आप जो भी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी हमारी नियत तो ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि बिना पात्रता हमें सम्यक दर्शन चाहिए क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें पात्र होना है, हमारी पात्रता बढ़ानी है और हमें मोक्ष मार्ग में आना है, ऐसा अभिप्राय होना चाहिए।
જ્ઞાની ઓળખાય નહી તો જ્ઞાની નો લાભ એને કેવી રીતે મળે?
જ્ઞાની કા લાભ ઉસકો અપની યોગ્યતા કે અનુસાર મિલેગા,
ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષ પહેચાન સકતા હૈ ઓનલી।
तो
क्या में कैसे?
तो उसमें क्या है कि उनको सत्संग करना चाहिए, सत्संग से योग्यता बढ़ सकती है, अगर खुद अभिलाषी है तो पात्रता बढ़ सकती है सत्संग से, सत्संग से बढ़ाए और अपनी भावना को वर्धमान करे, आत्म कल्याण की भावना को वर्धमान करे, तीव्रता आनी चाहिए, तीव्रता नहीं आएगी तो अलग अलग बहाने से हम उसको गौण कर देंगे, प्रतिबंध कहते हैं।
क्या पात्रता उदय भाव है?
नहीं, पात्रता उदय भाव नहीं है, ठीक है, करणानुयोग से ये प्रश्न है, उदय उपशम क्षम उपायिक, पात्रता को उदय भाव में नहीं लेना है, पात्रता को लेना है पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक में लेना है। क्या
भव्यत्व पारिणामिक?
भव्यत्व पारिणामिक जो जी भवी होता है, जिसका होनहार अच्छा है, उनको उस प्रकार की पात्रता प्रकट होती है तो उसका भवितव्य पक गया और वो भवितव्य प्रकट होकर के मोक्ष मार्ग में प्रवेश
ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષ જ્ઞાની ને ઓળખી શકે છે અને તે જ એનો લાભ લઈ શકે
છે। સત્પુરુષ કી જિસકો ખોજ હૈ વો ખોજ રૂપ पर्याय भी एक पात्रता को सूचित करती है। सत्पुरुष की खोज और पात्रता अलग अलग रहने वाली चीज नहीं है, वो खुद ही पात्रता है कि इसको गरज हुई तो मुझे सत्पुरुष चाहिए चाहिए और चाहिए तो खुद पात्रता में आया है और उसको सत्पुरुष मिलने से उसकी पात्रता और बढ़ेगी क्योंकि उनको उसकी जरूरत लगी थी, वही पात्रता का चिन्ह है। कोई पात्रता
जाना चाहिए तो उत्कृष्ट मुमुक्षु ज्ञानी को पहचानता है,
अब फिर वो पहचानेगा।
इवन उत्कृष्ट मुमुक्षु नहीं होता तो भी
कि फिर वो उत्कृष्ट मुमुक्षुता में आ जाएगा, ज्ञानी के संग से उत्कृष्ट मुमुक्षुता में वो आ सकता है क्योंकि उनको जरूरत लगी है, वो आ सकता है, आ जाएगा अल्पकाल में, क्योंकि उनका तो एकमात्र अभिप्राय है जब हमारे आत्मा को आवरण करने वाले परिणाम कहाँ तक चालू रहेंगे इसका विचार करें तो कि जहां तक हम उसको आधार देते हैं वहां तक, जब हमारे को आवरण करने वाले परिणाम को हम आधार नहीं देंगे तो जो परिणाम निराधार हो गए वो कहां तक बेचारे टिकेंगे?
उसको टिकने के लिए कौन साधन है, कौन आधार है? कि कोई आधार नहीं है। तो एक सीधी साधी बात है कि हमें मुक्त होना है तो जो भी परिणाम से बंधन हो, आवरण हो, वो तो परिणाम निराधार हो जाएगा, उसका निषेध आ जाएगा, जोर से निषेध आ जाएगा। तो निराधार होने वाले परिणाम कहां तक टिकेंगे? वो चीज तो टिकने वाली नहीं है। तो हम उसको आधार देते हैं तो उसमें रस आता है, उसमें इसकी ताकत बढ़ती है, तो आत्मा को आवरण आता है, आत्मा को दबना पड़ता है।
मेजर ये प्रॉब्लम रहता है, उत्कृष्ट मुमुक्षु सब कुछ कर सकता है, तब लाभ जो होता है मेनली उत्कृष्ट मुमुक्षु लेता है, तो उत्कृष्ट मुमुक्षुता की भूमिका में हम पहुंचे कैसे?
कैसे
मीन सबका ये प्रॉब्लम है, उत्कृष्ट मुमुक्षु भी ज्ञानी का यथार्थ बने लाभ ले सकता है, तो बाकी सब जो लाभ लेना चाहे उत्कृष्ट मुमुक्षुता की भूमिका में पहुंचे कैसे?
इसके लिए अपने शिविर के पहले जो स्वाध्याय हुआ, मता को रोकने वाले होते हैं उनके विषय में, उन अंदर से असमाधान को प्रकट करके समाधान में आ जाना, थोड़ा विश्वास आ जाएगा। ऐसा विश्वास जमने के बाद दृढ़ मोक्ष, दृढ़ मुमुक्षुता प्रकट करना, वो कैसे? कि पूर्णता का लक्ष्य मानने से दृढ़ मुमुक्षुता प्रकट होगी। जिसको दृढ़ मुमुक्षुता प्रकट होगी वो जीव प्राप्त उपदेश का अमलीकरण के स्टेज में आएगा, आएगा और आएगा, क्योंकि उनकी मुमुक्षुता तीव्र है, उनको पूर्ण जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र अभी ही अभी अपना कल्याण कर लेना है, तो अमलीकरण में आएगा, आएगा और उसकी बहिर्वृत्ति शांत हो जाएगी, अंतरात्म वृत्ति बना आ जाएगा और ज्ञानी की पहचान की योग्यता में आ जाएगा। ये क्रम देखिए, गोपाल देव ने कितनी कृपा की है, सब बात व्यवस्थित करके रखी है। और इसका उत्तर सुभाग भाई का उनको मानना चाहिए, ऐसे ऐसे विषय में सुभाग भाई को विस्मरण करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जगतवासी जीव क्यों नहीं पहचान सकते, और अगर कोई पहचान सकते तो कौन पहचान सकते हैं, तो उसकी बात निकाल करके अपने अनुभव में। तो ये सुभाग भाई का उपकार है कि जब तक वो बाहर ले आए। तो पात्रता का विषय कृपाल देव के वचनामृत में बहुत मिलता है, जगह जगह पे मिलता है, अपनी योग्यता को समझ करके उसका कोऑर्डिनेशन कर लेना, अलग अलग जगह अलग अलग बात आई है, लेकिन हमको जो लागू पड़ती है वो एक जगह ले आना और एक एक जगह एकत्रित करके हमारी पात्रता को हम बढ़ा सकते हैं अच्छी तरह। अब जो कल के प्रश्न पेंडिंग थे वो लेते हैं। किसी ने पूछा है कि स्वानुभव की विधि बतलाई है, तो अगर पात्रता आती है तो भावभाषण आता है, वहां से पुरुषार्थ की दिशा बदलती है, वहां से स्वानुभव की विधि मिलती है। इसके पहले सीधा ही हमको स्वानुभव कर लेना है, इसलिए बता दो हमको स्वानुभव की विधि, ऐसा नहीं होगा। ये बात जो है क्रम से ही संपन्न होती है। तो आज दोपहर को जो प्रश्न चला, पत्र चला, कि जिसको परिभ्रमण की चिंतना और वेदना और जुड़ना आती है, और बाद में जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है, बाद में जो अमलीकरण में आता है, जिसके प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है, और जो अवलोकन करके भेद ज्ञान के स्टेज में आते हैं, और बाद में स्वरूप का भाव भाषण होता है, तब से पुरुषार्थ और ज्ञान स्वरूप सम्मुख होता है, बाद में स्वानुभव होता है स्वरूप की रुचि और महिमा तीव्र होकर के, तो ऐसे स्वानुभव की विधि इतना क्रम से होती है। ऐसे सीधा ही कोई स्वानुभव करना चाहे, रुचि तो पर की हो गई, पर उपयोग को आत्मा में लगाना चाहे ध्यान में बैठ करके, तो ऐसा कोई उपयोग का मोड़ होगा, रुचि उसको बाहर खींचती है, उसकी इच्छा कोई कामयाब होने वाली नहीं है।
ध्यान के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछने आया है। आजकल ध्यान के काफी कारण वेरी गुड लेवल चल रहा है विपश्यना ध्यान, और इसमें जैसे आपको ज्ञाता दृष्टा दिखाते हैं, तो वो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
तो क्रम भंग उपदेश और क्रम भंग प्रवृत्ति, ज्ञान के बिना ध्यान तरंग रूप है क्या? स्वरूप का स्वरूप ज्ञान में आया नहीं तो ध्यान किसका करेगा? ध्यान तो स्वरूप का होता है ना, तो स्वरूप तो ज्ञान में आया नहीं, ध्यान किसका हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। तो वो लोग जो प्रयोग कराते हैं वो मन वचन काया के प्रयोग कराते हैं, तो मन वचन काया है वो परद्रव्य है। परद्रव्य का ध्यान करना है या परद्रव्य का ध्यान छोड़ना है, ये तो कहो। हमारे मुमुक्षु थे, वो विपश्यना में जाके आए थे, तो थोड़ा उलझन में पड़े थे कि क्या करना। बोले कि आपको परद्रव्य का इस प्रकार का प्रयोग कराया, तो आपको परद्रव्य का ध्यान छोड़ने का था या परद्रव्य का ध्यान और लगाने का था कि मेरा श्वासोश्वास कैसा चल रहा है? उसमें क्या होता है, एक श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती है। आप वो बिगिनिंग है, लेकिन वहां कॉन्सेंट्रेशन तो करना पड़ता है ना, वहां एकाग्रता करनी पड़ती है ना। तो जिसकी एकाग्रता छोड़नी है उसके एकाग्रता से कैसे काम होगा, ये तो प्रोसेस ही उल्टा है।
एक्चुअली ये टाइम आपने लिखा है विज्ञान और धर्म में चरित्र में कि ध्यान की जैसे करते हैं वो ग्रह मिथ्यात्व को ज्यादा बढ़ाता है।
हाँ, वो ग्रह मिथ्यात्व बढ़ता है। ऐसे क्रम विपरीत प्रवृत्ति करने से और क्रम विपरीत प्रवृत्ति को सही प्रवृत्ति मान लेने से ग्रहित मिथ्यात होता है, तीव्र मिथ्यात हो जाता है।
पर भाई आपके बोलने में एक पॉइंट की सरखामणी हो सकती है, जैसे आप अवलोकन का बोलते हैं ना, अवलोकन में आप आपका विचार अलग करके देखो, ज्ञाता दृष्टा बनके देखो, वो एग्जैक्टली इसमें यही बात होती है कि आपको जरा अलग दिखाना, अलग ज्ञाता दृष्टा बनाने का सिखाते हैं। एक तो पॉइंट कंपेयर बताती है, इसलिए मैं बोलता हूँ।
उसमें क्या है कि परिणाम को नहीं देखते हैं उतना जितना श्वासोश्वास को देखते हैं। वो क्या कहते हैं, इधर केंद्रित करो ज्ञान को, फिर इधर करो, फिर ज्ञान को इधर केंद्रित करो, फिर इधर केंद्रित करो, 7 चक्र लेते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, और श्वासोश्वास के साथ उसके वो कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता कराते हैं। हम तो कभी गए नहीं, लेकिन एक दो लोगों के लोग किताबें ऊपर ऊपर से देख लिया था, तो मालूम पड़ गया कि गड़बड़ वाली बात है। तो ऐसा नहीं होना। अवलोकन की बात में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन कोई अवलोकन करके उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हमारे में भी अवलोकन का जो विषय चला है उसमें अवलोकन करके अवलोकन की चर्चा करें तो कितने पहलू उसमें समझ में आता है। वो ध्यान का प्रयोग नहीं है, अवलोकन है, वो कोई ध्यान का प्रयोग नहीं है, तो उसका ध्यान का नाम ही नहीं देना चाहिए। ध्यान तो है स्वरूपाचरण, ये तो चारित्र की भूमिका है। अब श्रद्धा का तो ठिकाना नहीं, न ज्ञान का ठिकाना, और चारित्र में कहां से आगे कैसे आ सकते हैं? गाड़ी में घोड़ा आगे होता है, डिब्बा पीछे होता है। अब डिब्बा को रखो आगे और घोड़ा के रखो पीछे और चलाओ गाड़ी, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। गाड़ी तो नहीं चलेगी लेकिन एक्सीडेंट होगा, और दूसरा कुछ नहीं होएगा। ट्रेन में भी इंजन आगे होता है कि पीछे होता है? हाँ, आगे क्या दिखेगा? इंजन को पीछे रखे, डिब्बा आगे रखे, तो क्या होगा? तो ऐसे विपरीत मार्ग में नहीं चलना चाहिए।
प्रश्न आया है, परिणाम का कर्ता परिणाम ही है, परद्रव्य या स्वद्रव्य नहीं तो पर्याय स्वयं ही द्रव्य न बन जाएगी। प्रमाण ज्ञान को छोड़ करके पर्याय का कर्ता पर्याय ही ऐसा मानेंगे तो पर्याय एक स्वतंत्र द्रव्य बन जाएगा, लेकिन जिसको प्रमाण ज्ञान का ख्याल है कि द्रव्य भी परिणाम का कर्ता है, एक न्याय से द्रव्य भी परिणाम का कर्ता है और एक न्याय से परिणाम ही परिणाम का कर्ता है, स्वद्रव्य और परद्रव्य ये कथनचित बात है। सर्वथा नहीं है, सर्वथा लेंगे तो पर्याय है वो द्रव्य बन जाएगी, ये बात जरूर है। यानी पर्याय द्रव्य बन सकती नहीं, लेकिन ऐसा गृहित विचार हो जाएगा। स्वानुभव काल में आत्मा किस प्रकार ज्ञेय बनता है, आत्मा के प्रदेश और अनंत गुण तो दिखाई नहीं देते। हाँ, स्वानुभव के काल में आत्मा अनंत गुण का अभेद रूप से अनुभव में आता है, अनंत गुण के अनंत भेद रूप से अनुभव में नहीं आता, और भेद का अनुभव करने का ज्ञानी को प्रयोजन भी नहीं है, और प्रदेश को देखने का भी प्रयोजन नहीं है। हमारा मतलब हमारे प्रयोजन से है, तो हमारे प्रयोजन में आत्मानुभव में हमको आनंद और सुख आता है कि नहीं आता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, बस बात पूरी हो गई। हमें क्या चाहिए और प्रदेश देख करके हमें क्या और लेना है, और अनंत गुण के भेद देख करके हमें क्या पाना है, कोई जरूरत
नहीं है।
तो इसलिए वो अभेद रूप से अनुभव में आता है और वही इतना ही प्रयोजनभूत है, इससे ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं है। अंधा गुड़ खाता है या मिठाई खाता है, और जिसकी आंख खुली है वो भी मिठाई खाता है, स्वाद लेने के प्रयोजन में क्या अंतर हुआ? हाँ,
कुछ नहीं,
कुछ अंतर नहीं। तो प्रयोजन तो स्वाद लेने का है, ऐसे प्रयोजन सुख का स्वाद लेने का है। अभिप्राय में दोष न हो फिर भी कोई अपना दोष बताए और तब जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसमें दर्द होता है, तो यदि ऐसा दर्द होता हो तो ऐसा एडजस्टमेंट करना या किस भाव से व्यक्त करें, अथवा यदि एडजस्टमेंट करते हैं तो किस भावों को व्यक्त करते हैं? प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है,
समझ में नहीं।
अभिप्राय में दोष न हो फिर भी कोई अपना दोष, हर जगह एडजस्टमेंट शब्द नीचे में आर्ग्यूमेंट का, किस भाव में व्यक्त करें, अथवा जो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो किस भाव में व्यक्त करता है? अच्छा, अभिप्राय में दोष न हो सकता फिर भी कोई अपना दोष बताता है, तो अपने को जितना दोष है उतना तो स्वीकार करना चाहिए कि अभिप्राय में दोष नहीं है लेकिन उतना दोष हमारे से हो गया है, तो उसका बचाव का आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। पर हमें दर्द क्यों हो रहा है? कोई हमारा दोष बताते हैं तो इसमें हमें दर्द क्यों होना?
हमें तो खुशी होनी चाहिए और बताने वाले के प्रति उपकार बुद्धि आनी चाहिए कि हमारा हितेच्छु है, तब तो हमारा दोस्त बताता है और चाहे किसी भी अभिप्राय से बताता हो, लेकिन उसने अपना हमारा दोष बताया उतना उपकारी समझो ना, उनको बुरा क्यों समझते हैं, उनको उपकारी माने कि चलो अपना दोष तो बताया उसने, इतना तो अपना काम किया।
दोस्त बताने वाला अभिप्राय किसका है, खुद का है या सामने वाले का?
मतलब
क्लियर नहीं हुआ प्रश्न।
अभिप्राय में दोष न हो, मैंने अपने अभिप्राय में दोष न हो,
मेरे में ऐसा दोष ना हो, पर फिर दूसरा कोई बता दे, ऐसा कोई
बता भी कोई दोष बताते हैं
दूसरा,
तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसमें दर्द होता है, तो किस प्रकार का एडजस्टमेंट करने में दर्द होता है वो बात क्लियर नहीं हो रहा है।
हाँ जी, बोल रहे
प्रश्न में वो बात साफ नहीं हो रही है।
अभिप्राय का
तो दोष नहीं होता है, उसमें बात तो इस प्रकार की थी कि हमारा अभिप्राय को साफ है कि हमको आत्म कल्याण करना है, फिर भी हमको वर्तमान परिस्थिति में कोई एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, प्रवृत्ति में, किसमें प्रवृत्ति में जो हमारे सिद्धांत के अनुकूल नहीं है तो दर्द होता है, दोष बताने की बात नहीं है
इसमें, तो तीव्र निषेध आता है खुद को
वहां, तो तीव्र निषेध है कि हमारे सिद्धांत विरुद्ध, हमारे अभिप्राय विरुद्ध हमको प्रवृत्ति में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो हमको सुहाता नहीं है
जी,
इसलिए हमको दर्द होता है, वो बात थी
बराबर,
इस प्रकार की बात
थी बराबर,
तो ऐसी बात लेना है, वो बात इस तरह से समझ में लेना है।
प्रवृत्ति में यदि एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसी प्रवृत्ति में यदि एडजस्टमेंट, ऐसी प्रवृत्ति के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता हो,
एडजस्टमेंट करना पड़ता हो तो दर्द होगा, क्या होता है कि कहीं लोग ऐसे समाधान करते हैं कि चलो इतना एडजस्टमेंट कर लो तो सत्संग वगैरह की व्यवस्था बराबर बैठ जाएगी, तो उसमें उसको दर्द नहीं होता है, ये बताता है कि उसका एडजस्टमेंट है वो प्रवृत्ति का नहीं है, अभिप्राय का। अभिप्राय में जिसको वन वे ट्रैफिक है उसमें प्रवृत्ति अभिप्राय विरुद्ध करनी पड़ती है, वो एडजस्टमेंट करने के कारण उसको दर्द आएगा, वो बात है, किस प्रकार से वो बात है, आई समझ में बराबर? वरना क्या होता है, प्रश्न चला था उस वक्त कि ऐसा एडजस्टमेंट के बारे में स्वच्छंद कोई पोष लेता है, कहा ऐसे एडजस्टमेंट के बारे में कोई स्वच्छंद पोष लेता है, तो स्वच्छंद का पोषण वहां हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चले, कि जिसको दर्द हुआ उसकी बात सही है और जिसको दर्द नहीं हुआ तो उसको स्वच्छंद रूप से भी समाधान हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये दर्द की मात्रा भी तो बढ़नी चाहिए ना?
हाँ बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। देखिए हर काम में हमारे अभिप्राय विरुद्ध कोई बात बनती है तो हमको दर्द होता है कि नहीं होता है?
होता है,
कि प्रैक्टिकल साइड है इस विषय की,
होता है।
तो जब हमारे आत्म कल्याण का अभिप्राय है इसके विरुद्ध हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो दर्द होगा कि नहीं होगा?
होना ही चाहिए,
होगा ही होगा, सीधी सादी बात है, प्रैक्टिकल साइड बराबर, बस उतनी सी बात है। अगर हमको दर्द नहीं होता है और हम समाधान कर लेते हैं तो वो स्वच्छंद का पोषण हो गया,
वो प्रवृत्ति का दोष नहीं है, वो अभिप्राय का दोष हो गया,
अभिप्राय का दोष हो गया, प्रवृत्ति का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अभिप्राय में एडजस्टमेंट हो गया, ये गलत बात है। प्रकृति का समर्पण ज्ञानी को जीव इस प्रकार से करता है कि कोई जीव, समझो कि कोई जीव की कोई प्रकृति है, तो प्रकृति के समर्पण करने के बाद एक ही झाके से क्रोध या रस समर्पित होता है कि बाद में प्रयास प्रयास क्रोध के रस को शिथिल होते होते तो हो जाता है और चारों वो समर्पण किया ऐसा गिने, समर्पण गिनाए यही सच्चा समर्पण गिनने में आता है। बात तो वो है कि बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, रस से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, एकदम ज्यादा फर्क रस की मात्रा में हो जाता है जब ऐसा होता है, तो उसको प्रकृति का समर्पण कहते हैं कि हमारी जो प्रकृति है उसमें एकदम फर्क आ जाना चाहिए। ऐसी बात है, भले पूरी प्रकृति नहीं जाएगी लेकिन रस की मात्रा में तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, वो फर्क उतना हो जाएगा कि साथ में रहने वाले को दूसरे को भी मालूम हो जाएगा फर्क है। ऐसे प्रसंग में इनकी प्रकृति अब जोर करती नहीं है, तो प्रकृति का जोर टूट जाता है उसको कहते हैं कि प्रकृति का समर्पण किया। जोर टूटना चाहिए वो बात है, जोर कहो रस कहो शक्ति कहो इनकी बात है।
यहाँ पर तो एक झटके अभिप्राय के लिए कोई क्रम नहीं है, ऐसे समर्पण के लिए भी कोई क्रम होता है?
समर्पण में ऐसा है कि जब समर्पण होता है तो समर्पण में क्रम नहीं है लेकिन प्रकृति जाने में थोड़ा क्रम पड़ रहा है, निकलने में क्रम पड़ रहा है,
अर्पण करने में कोई क्रम,
अर्पण करने में थोड़ा अर्पण किया 50% अर्पण किया फिर 100 अर्पण किया ऐसे मार्ग, समर्पण में तो पूरा समर्पण भाव आ ही जाएगा और इसलिए रस उसका बिल्कुल टूट जाएगा और बाकी का भाग जो है इसमें थोड़ा क्रम पड़ता है।
जैसे पहले जो प्रश्न चला अभिप्राय वाला था यही सेम प्रश्न उसके साथ लागू हो जाता है।
आदिदेव चिमंडन भगवान नो जय ओम परम कृपा श्री कांत गुरुदेव नो जय विश्व